माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविशिष्ट कॉन्फाउंडर आचार्य शिवदी होलवर्ण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य श्लोक संख्या 11। नमन्ति यत् पाद निकेतम आत्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथम सह वीरः श्रियं अंग दुष्टजाम युवा एसत् उत्रष्टुम अहो सह अशुभिः। नमन्ति यन् पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्ग दुष्टजाम न्यवेशतोत्स्रष्टु महो सहासुभिः। नमन्ति यन् पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्ग दुस्त्यजाम युवेशतोत्रस्तु महो सहासुभिः। शब्दार्थ नमन्ति झुकते हैं यत्पाद जिनके पांव के निकेतम नीचे आत्मनः अपने शिवाय कल्याण के लिए हानीय लाकर धनानि संपत्ति शत्रवः शत्रुगण कथम किस कारण से सह वह वीरः वीर श्रियं ऐश्वर्य अंग हे दुष्टजाम जिसका छोड़ पाना दुष्कर है उसे युवावस्था में ऐसत इच्छा की उत्थ्रष्टुम त्याग देने के लिए अहो अरे सह साथ अशुभी जीवन के अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। वे इतने बड़े राजा थे कि उनके शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व यहां तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। प्रभुपाद लिख रहे हैं उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। अवांछनीय मतलब कोई दोष है ना। परीक्षित के जीवन में कोई दोष नहीं था। आप जानते हैं ये श्लोक कौन कह रहा है? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, है ना, और प्रश्न कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने क्यों अपना जीवन के सहित सब कुछ त्यागने की इच्छा की। परीक्षित के जीवन में कोई भी दोष नहीं था, अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे, इसमें लिखा है युवा, वो नवयुवक थे, नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य समेत जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी परीक्षित महाराज को, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही लाभ के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। हैं? शत्रु जो है ना खुद अपनी भलाई के लिए लाते थे सब प्रकार का धन, फिर मित्रों की तो बात ही क्या है। परीक्षित महाराज को कर वसूलने में कोई दिक्कत नहीं थी। प्रश्न यह है कि परीक्षित ने क्यों राज्य छोड़ा और फिर अपना जीवन भी छोड़ा, किस कारण से? जो ऋषि हैं उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, किस कारण से? उनके राज्य तो कभी दिक्कत होती ही राजा को कि भाई धन नहीं है, तो बेचारा बड़ा परेशान होकर के छोड़ के चला जाए। तो कोई कमी नहीं थी उनके पास धन की, कर वसूलने में कोई दिक्कत नहीं थी उनको। शत्रु डर के मारे अपनी संपत्ति भेंट करते थे उनसे डर करके। फिर क्या कहा जाए, जो सामान्य प्रजा है वो तो खुशी से कर देती थी, है ना? ऐसे श्रेष्ठ राजा को जो प्रजा है वो खुशी से कर देती थी अपनी आमदनी का छठांश या चतुर्थांश, एक चौथाई। जो व्यापारी लोग थे बड़ी खुशी से अपनी आमदनी का एक चौथाई हिस्सा कर के रूप में राजा को देते थे, बड़ी खुशी के साथ देते थे, क्योंकि राजा के कारण ही सब प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति प्राप्त हो रही थी लोगों को। इसलिए क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही लाभ के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां शक्ति से ओतप्रोत थीं। प्रजा को सुख देने के लिए जो पर्वत हैं वो अपनी संपत्ति देते हैं, नदियां अपनी संपत्ति देती हैं। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था, अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। यहां तक प्रभुपाद जी का तात्पर्य था। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऋषियों की ये जिज्ञासा है, क्या कारण? तो खैर, ये तो हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि क्या कारण था। उनको 7 दिन में मरना था, इसलिए उन्होंने राज्य त्याग दिया। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जिन पर विचार करना चाहिए। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि शत्रु भी जो है उनके चरणों में यत पाद निकेतम, पाद निकेतम का मतलब है उनके पाद पीठ पर जहां पैर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीढ़ा। जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो पैर के नीचे एक आसन होता है, चौकी। पैर के नीचे जो चौकी होती है तो उस चौकी पर जो है ना वो शत्रु लोग भी झुक करके और सब प्रकार की संपत्ति अर्पित करते हैं डर के मारे। तो परीक्षित का ऐसा जो है शासन था, शत्रु लोग जो है डरते थे उनसे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भगवान का भक्त होता है तो उसके तो शत्रु होते नहीं, अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु भाव शांता। कि जो भक्त हैं वो तो अपना शत्रु पैदा करते नहीं। युधिष्ठिर महाराज को भी अजात शत्रु कहा जाता है, अपना शत्रु पैदा करते नहीं। लेकिन यहां पर बताया कि शत्रु डरते हैं और डर करके उनके सामने अपनी सब सामग्रियां भेंट करते हैं। तो इसका क्या उत्तर है? शत्रु, हाँ, जो भक्त है वो किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता, लेकिन फिर भी लोग शत्रु बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं शत्रु? जब वो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, साधु आचार्यों के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो वो भगवान के शत्रु बन जाते हैं। और जब भगवान के शत्रु बन जाते हैं तो भक्त भी उनसे मित्रता नहीं करता है? जो भक्त है वो भगवान के साथ इस मामले में एक होता है। इस मामले में जो भक्ति की इच्छा है वो भगवान की इच्छा से इस मामले में एक होती है, अलग नहीं होता। कि वो भगवान के विरुद्ध अगर कोई आचरण कर रहा है, शास्त्र साधु आचार्यों के विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो वो जो है भक्त का भी शत्रु बन जाता है, या भक्ति भी उसका शत्रु बन जाता है। और किसी कारण से नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई शत्रु नहीं बनता जो भक्त है। भौतिक संसार में लोग शत्रु बन जाते हैं, या किसी को अपना शत्रु समझते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा कोई डाले तो जैसे चैतन्य महाप्रभु, तो एक ब्राह्मण उनका शत्रु बन गया, क्योंकि कीर्तन उनके कीर्तन में उसको आने नहीं दिया गया था। तो ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को साथ दिया कि तुम्हारा जो गृहस्थ जीवन का सुख है वो नष्ट हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपना मित्र माना, उसके साथ को वरदान माना। तो जो भक्त है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण किसी को शत्रु नहीं बनाता, लेकिन शत्रु फिर भी बनाता है किसी को। किस कारण से? भगवान के कारण। भगवान के विरुद्ध आचरण करे कोई, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करे, साधु आचार्य इनके विरुद्ध आचरण करे, तो फिर वो जो है ना उसको मित्र नहीं समझता। फिर नहीं सोचते जी नहीं, हम तो बहुत बड़े महात्मा हैं, हम तो जो ना किसी को शत्रु नहीं मानते। नहीं, फिर शत्रु है, है ना। इस प्रकार से भगवान भी भगवत गीता में अर्जुन को आदेश देते हैं, क्या कहते हैं, तस्मा तुम तिष्ठ यशोलभसु जित्वा शत्रु भुंक्षु राज्यम समृद्धम। तुम उठो और यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतो और समृद्ध राज्य को भोगो। तो हमें भगवत गीता की दृष्टि से देखना चाहिए कि शत्रु हैं। ये सिद्धांत नहीं है कि नहीं नहीं कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं, ये सिद्धांत गलत है। भगवत गीता की दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि हाँ कोई शत्रु है। जो महात्मा गांधी का सिद्धांत है क्या, कि हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से नफरत करो पापी से नहीं, ये सिद्धांत हमेशा सही नहीं होता। ये सिद्धांत हमेशा सही नहीं होता कि पाप से नफरत करो पापी से नहीं। नहीं, पापी से नफरत करना पड़ता है कभी कभी, और जरूरी होता है, अगर वो पाप नहीं छोड़ता, आप समझ रहे हैं। तो ये सिद्धांत नहीं कि नहीं हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है, हम किसी के शत्रु नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, ये गलत है। तो यहां पर है शत्रु डरते हैं, और जो जो श्रेष्ठ राजा होता है वो शत्रु को डराता है। इसके लिए एक और भी शब्द है, परंतप। परंतप अर्जुन को भी भगवान गीता में कई बार परंतप कहते हैं। परंतप का मतलब क्या है? परम का मतलब है शत्रु, तप माने तपाने वाला, जो शत्रुओं को तपाए, जो शत्रुओं को कष्ट पहुंचाए, जो शत्रुओं को भयभीत करे, उसको परंतप कहते हैं। तो जो है शत्रु जो है होते हैं, और शत्रु को जो है ये आवश्यक है कि कष्ट दिया जाए, भयभीत किया जाए, जिससे कि उसके जो शास्त्र रुद्र आचरण है वो रोके जाए। जैसे कि इसमें आता है कलयुग, जब महाराज परीक्षित ने देखा कलयुग को, एक शूद्र है और राजा की वेशभूषा धारण करके गाय को और बैल को कष्ट पहुंचा रहा है, बैल को मार रहा है, गाय को लात मार रहा है, तो उन्होंने उसको अपना शत्रु समझा। वो क्या कहते हैं, ये अध्याय 17 का श्लोक संख्या 14 है, इसमें परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, जो कोई भी निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। राजा का काम है उसको डराना। किसको डराना? जो कोई भी निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। जनो नागर सघम युंजन सर्वतोष्य चमन भयम साधु नाम भद्रमे विश्यान असाधु दमने कृते। प्रभुपाद भी तात्पर्य लिख रहे हैं, तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना, इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। फिर परीक्षित कह रहे हैं, जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना हो। कहते देवता भी क्यों ना हो, उसकी भुजा सजी हुई है, किससे, बाजूबंद और आभूषणों से सजी हुई है, लेकिन उसको मैं काट डालूंगा उसकी भुजा, जो निरपराधों को सताता है। अनागह स्वह भूतेषु या आगस्कृण निरंकुश आर्हा आहर्तास्मि भुजम साक्षां अमर्त्यस्यापि सांगदम्। आगे, शासक का परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के आदेशों से विपत हो जाते हैं उन्हें दंड दे, दंड देना। राजो ही परमो धर्म सुधर्म स्थानुपालनम शास्त्रोन्यान यथा शास्त्रम अनापद्य पथानि है। तो इस तरह से जो है कुछ बातें आती हैं। इसी प्रकार से कलयुग को जो है मारने के लिए उन्होंने तलवार उठा ली, और सचमुच कलयुग डर रहा था, कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं नहीं कुछ शायद कहने की बातें हो, ये सचमुच ऐसा हुआ कि कलयुग डर गया, और उनके डर से अभी भी कलयुग सीमित है। जिन स्थानों में उन्होंने उसको निवास दिया उन स्थानों में अभी भी सीमित है, मतलब ऐसा उनका प्रभाव है परीक्षित महाराज का कि यद्यपि वो चले गए हैं लेकिन उनका डर अभी भी कलयुग को है, इसलिए वो नहीं फैल रहा। अगर आप उन स्थानों को त्याग दें तो आप कलयुग से बच सकते हैं, जबकि कलयुग की आयु कितनी है, 432,000 साल है उनका डर, अभी भी कलयुग को उनका डर बना हुआ है, जिससे कि वो जो है अभी फैल नहीं रहा है, जितने स्थान दिए हैं उतने स्थानों में सीमित है। तो इसमें लिखा है कि इस प्रकार 1,007,000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी, तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कलयुग को मारने के लिए अपनी तेज तलवार ग्रहण की। इति धर्मम महीम चैव सांत्वयित्वा महारथः निशातम आलदे खड्गम कलिये धर्म हे तवे। यह अध्याय 17 है, श्लोक संख्या 28। फिर आगे, जब कलि ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। जब देखा कि सचमुच मार डालेंगे, तम जिघान सुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगान भय विहवला। फिर शरणागत के रक्षक और इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कलि को मारा नहीं, अपितु वे दया पूर्वक हंसने लगे क्योंकि वे दीन वत्सल हैं। लेकिन वो पूर्ण रूप से शरणागत हो गया। शरणागत का मतलब क्या, कि ठीक है माफ करो, ऐसे नहीं। शरणागत का मतलब कि आदेश का पालन करेगा, जो आदेश देंगे उसका पालन करेगा, ऐसे नहीं ठीक है माफ कर दिया, ऐसे नहीं माफ किया, वो आदेश का पालन करेगा, पूर्ण रूप से समर्पित, तब उनको छोड़ा है। वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया कलयुग, कि आपके आदेश का पालन करूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ठीक है, मतलब जहां कहें वहां पर रहना है, अगर बैठने को कहें तो बैठे रहना, खड़े होने को कहें तो खड़े होना, आदेश बिना आदेश के बैठे से खड़े नहीं होना या खड़े से बैठना नहीं, इतना शरणागत था वो। तब तो उन्होंने मारा नहीं उसको। पतितं पादयो और वीरः कृपया दीन वत्सलः शरण्यो नावधि श्लोक्यम् आह चेदम हसन्निव। अब राजा क्या कहते हैं, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। क्या कह रहे हैं राजा, मेरे राज्य में नहीं रह सकते तुम, ठीक है तो छोड़ देता हूं लेकिन मेरे राज्य में नहीं रहना तुम। न ते गुड़ा केश यशोधराणाम बद्धांजलेर वे भय मस्ती किंचिन न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु। यदि कली रूपी अधर्म को कर्म करने दिया जाए तो लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह और दम्भ जैसे अधर्म का निश्चय ही बोलबला हो जाएगा। अगर तुमको मैं यहां जगह दूंगा तो मेरे राज्य में ये सब चीजें आ जाएंगी। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे स्वनु प्रवृत्तोयम अधर्म पूगहम लोभो नृतम चौर्य मनार्य मंगो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भा। अते भी अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। ये जो मेरा राज्य है यहाँ पर सत्य धर्म का पालन करते हैं लोग। न वर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यन्ति यज्ञैर यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विज्ञान। समस्त यज्ञों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता पूजा जाता है लेकिन भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। इस तरह केवल वे ही जो पूजा करने वाला का सारा कल्याण करते हैं। तो फिर क्या हुआ कलयुग की क्या हालत हुई? सूत जी बताते हैं, इस प्रकार महाराज परीक्षित से आदेश पाकर कली भय के मारे कांपने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। अब कलयुग कहता है, परीक्षित एवं आदिष्ट सकलिर जाते वे पथु तमुद्यतासि माहेदम दंड पाणिम एवोद्यतम। आप क्या कहता है ध्यान से सुनिए, कलयुग क्या कहता है? हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं वहीं केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपका राज्य नहीं है तो मैं कहां जाऊं? वो कहता है, मैं जहां भी रहूंगा आप मुझे मारने के लिए तैयार हो, मैं कहां जाऊं? देखा कितना वो डरा हुआ है, कितना दीन है कलयुग, ऐसे कह रहा है। यत्र क्वमाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु शराशनम्। अतएव हे धर्म रक्षक, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं, मतलब मैं भी आपकी प्रजा हूं। वो कहता है, कलयुग कहता है, मैं भी आपकी प्रजा हूं तो आप मुझे भी शरण दीजिए, मुझे भी स्थान दीजिए। इस प्रकार से कलयुग कहता है, तन्मय धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देशतुमर्हसि यत्र विनियतो वत्स आतिष्ठस्ते नु शासनम्। तो फिर परीक्षित उसको स्थान देते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। चार स्थान दिए परीक्षित महाराज ने, उसको सीमित किया इन स्थानों में। अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतम पानम स्त्रियास्तूनां यत्रा धर्म चतुर्विधः। तो ये जो है परीक्षित महाराज का शत्रुओं के साथ ऐसा व्यवहार है। अब परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी जब उनका जन्म हुआ, तो धृष्टे महाराज के पूछने पर ब्राह्मणों ने उनके गुणों की भविष्यवाणी की थी। उसमें 14 श्लोक हैं जिनको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। यह अध्याय 12 का श्लोक संख्या 15 से लेकर 28 तक है। जब युधिष्ठिर महाराज दान देते हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं, तो ब्राह्मण लोग परीक्षित के गुणों का वर्णन करते हैं। राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट अध्याय 12 का श्लोक संख्या 15। राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रमुख कहकर संबोधित किया और बताया कि तुम्हारा पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। पुत्र मतलब पौत्र, युधिष्ठिर को कह रहे तुम्हारा पौत्र। तमोचुर ब्राह्मण तुष्टा राजानं प्रस्थर्यान्वितं एषहस्मिन् प्रजातन्तो पुरुणां पौरवर्षभ। ब्राह्मणों ने कहा ये निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। आप जानते हैं किससे नष्ट हो रहा था? ब्रह्मास्त्र। किसने छोड़ा था? अश्वत्थामा ने छोड़ा था। देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम पेयुषी रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। इसलिए विष्णुरात नाम है, विष्णुरात। इस कारण से है बालक संसार में विष्णुरात नाम से विख्यात होगा। हे परम भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। अब युधिष्ठिर कहते हैं, पूछते हैं और ज्यादा इस बालक के बारे में। हे महात्माओं, क्या यह बालक इस